श्री नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है तो लक्ष्मी नारायण ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों कहा जाता है? जो भी धर्म पिताएं आए हैं, धर्म स्थापन किए हैं, सभी ने तो कुछ न कुछ ज्ञान सुनाया है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान सुनाया उसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि उन धर्म पिताओं ने पुरानी परंपराओं से टक्कर लेने के लिए रौद्र रूप धारण नहीं किया और दुनिया नीचे गिरती चली गई, अपने अपने धर्म की धारणाएं स्थापन की, लेकिन दुनिया फिर भी नीचे गिरती चली गई, दुनिया में दुख दर्द बढ़ते चले गए। उनके ज्ञान का जो फायदा होना चाहिए, ज्ञान से मुक्ति होनी चाहिए दुख दर्दों से, जैसे वेद वाक्यों में लिखा हुआ है, रते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो ज्ञान बैलेंस का नाम है। हर धर्म पिता अपने धर्म के फॉलोअर्स से प्यार करता है, जैसा कोई भी बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन प्यार भी की कोई सीमा होती है बैलेंस में रहने की। युधिष्ठिर का भी प्यार था पांडवों के प्रति, और धृतराष्ट्र का भी प्यार था अपने बच्चों के प्रति, कौरवों के प्रति। अंतर क्या था? बैलेंस का अंतर था। ला और लव, अगर इसका बैलेंस नहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो भी धर्म पिता आए, उन्होंने जो भी टीचिंग्स दी, जो भी शिक्षाएं दी, जो भी धारणाएं सिखाई, उनमें ये त्रुटि रह गई। उन्होंने अपने फॉलोअर्स का पक्ष किया, जैसे होता है जो भी देहधारी होते हैं, वो अपने शरीर रूपी रथ वाले होते हैं। कोई ऐसा भी धर्म पिता हुआ ईश्वर को छोड़कर जिसको अपना रथ ना रहा हो, और जिसको जिसको अपना रथ होता है वो अपने रथ के प्रति स्वार्थी जरूर होता है। रथ के प्रति स्वार्थ होता है तो वो बुद्धि कभी बैलेंस में नहीं काम कर सकती। जब बुद्धि बैलेंस में काम नहीं करेगी तो रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता, सुख शांति की दुनिया बन नहीं सकती। सुख शांति की दुनिया बनाने के लिए पहली बात है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर रूपी रथ है, मुझे आत्मा का शाश्वत रथ नहीं है, ये आज है कल खलास हो जाएगा। ये स्वार्थ बुद्धि ये कभी ज्ञान नहीं बना बता सकती, अज्ञानता ही सिखाती है। एक परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ही ऐसा है जिसको अपना रथ नहीं होता, उसको अपना रथ नहीं है तो उसको अपना स्वार्थ भी नहीं होता, लेकिन वो रथ के बगैर कार्य भी कुछ नहीं कर सकता। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जैसे जड़वत हो जाती है, तो सुप्रीम सोल जब इस शक्ति पर आता है तो पहली पहली बात है उसको रथ धारण करना है, और जिस रथ को वो धारण करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थी होगा, बड़ा देहाभिमानी होगा या छोटा देहाभिमानी होगा, सबसे जाति पतित होता है उस पतित से पतित तन में, रामी कांटे में परमात्मा आता है, इसलिए मुरली में बोला है जो राम होता है वही अंतिम जन्म में क्या बन जाता है, रावण बन जाता है। अब समस्या हल कैसे हो, उसका पहला पॉइंट बताया पढ़ाई का, ईश्वरीय पढ़ाई का, कि अपन को आत्मा समझो। पहली पढ़ाई क्या पढ़ाते, तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप की औलाद, परमात्मा बाप की औलाद है तो स्वार्थ की बात खत्म हो जाती है। ये पढ़ाई का पहला फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को जो आत्मा जिस समय ज्ञान में आती है, उस फर्स्ट इम्प्रेशन को जितना गहराई से धारण करती है, वो उतनी ही पावरफुल और सुप्रीम सोल की नजदीकी बन जाती है। सुप्रीम सोल बाप की पहली शिक्षा ही है, क्या मैं आत्मा हूँ, मैं जिनसे भी बात कर रही हूँ वो भी सब आत्मा है। दूसरों को शरीर के रूप में न देखना, आत्म रूप में देखना, परमात्मा बाप के बच्चे हैं, मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा बाप का बच्चा हूँ, सुप्रीम सोल की औलाद हूँ, ये भाव सदा बैलेंस लाता है। स्वार्थ बुद्धि में तू तेरे का मेरे का ये ऊंचा है ये नीचा है भेद बुद्धि पैदा होती है। आत्म की स्थिति में कोई भेद बुद्धि पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सुप्रीम सोल बाप देवान को नहीं देखता, क्या देखता है, इस मनुष्य शक्ति में कौन सी ऐसी आत्मा है जिससे मैं आत्मज्ञान दूं तो सबसे पहले वो शक्ति पक्की बात को अपने को आत्मा समझ ले। उस आत्मा को वो जानता है। ये पहली मेरी पढ़ाई हुई पढ़ाई कौन पहले पढ़े, उस बात को वो जानता है। ये भी जानता है कि संघ के रंग में आने से आत्मा पतित बनती है, देवहानी बनती है, देवहन बढ़ता है। और ये भी जानता है कि निराकारी स्टेज के साथ रहने वाले की स्थिति भी वैसी ही बनेगी। तो सुप्रीम सोल बाप इस शक्ति पर जब आता है तो उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है जो सारी शक्ति का बीज है। सारी मानवीय शक्ति में पहला बीज बिंदु है जो अपने को पहले बिंदु रूप में स्थापित कर लेता है। ये फाउंडेशन के समय की बहुत मुख्य बात है। कहते हैं कि पालना में लालना की स्थिति का पता पड़ जाता है। लालना के पांव ही बुद्ध रूपी पांव देखे जा सकते हैं। तो शुरुआत में जो स्थिति जिसने बना ली वो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट तक रहता है, वो आदि सो अंत। ऐसे नहीं कहा जाता जिसने आदि किया उसने सब कुछ किया, क्या कहा जाता है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। लेकिन अंत करेगा कौन, जिसने आदि में पक्का फाउंडेशन डाला होगा आत्म की स्थिति का, वो पक्का अंत कर सकता है। आत्म की स्थिति है, पक्की है, तो किसी प्रकार का भय नहीं होता। धर्म स्थापना के कार्य में धक्के खाने पड़ते हैं। जो भी धर्म पिता आए उन्होंने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी ने धक्के खाए, लेकिन देह अभिमान कुछ न कुछ रह जाता है वो देहाभिमान भय पैदा कर देता है, और उस भय के कारण जितना मुकाबला करना चाहिए पुराने समाज का, पुरानी समाज की कुरीतियों का, परंपराओं का, उतना आत्मा मुकाबला नहीं कर सकती। जो भी मनुष्य गुरु हुए उनमें ये देहभानी की कमी रह गई। एक सुप्रीम सोल बाप ऐसा है, वो जब इस शक्ति में आता है तो स्वयं कुछ नहीं करता, वो अगर करेगा तो बढ़ेगा भी, अच्छा करेगा तो उसको पुण्य कर्म मिलेगा, बुरा करेगा तो पाप कर्म उसको भी मिलेगा, लेकिन वो तो अकर्ता कहा जाता है। कौन? सुप्रीम सोल बाप। इसलिए वो जब इस शक्ति पर आता है तो जन्म मरण के चक्र में जो भी आने वाली आत्माएं हैं उनमें से ऐसी आत्मा को पकड़ता है पहले पहले, जो इस आत्म की स्थिति में ज्ञान होने के बाद हीरो पाठधारी है। हीरो कौन बनता है? जो जीरो बनता है वो हीरो बनता है। पहले नंबर का जीरो बने तो पहले नंबर का हीरो बने। कोई पुरुष ब्राह्मणों के लिए तो पुरुष मुरली है, मुरली में बोला हुआ है कि जिनकी जिनकी आत्म की स्टेज पक्की होती जाएगी उनको डायरेक्ट परमात्मा बाप से पढ़ाई मिलेगी। देहवाणी तो सब है, बेसिक नॉलेज में सारे ही देहवाणी, वहां पहला पहला ज्ञान ही दिया जाता है, पहला पाठ ही पढ़ाया जाता है। तुम आत्मा हो। अब जब हम आत्मा है, दूसरे भी मनुष्य है वो सब आत्मा है, तो सिर्फ कहने कहने के लिए हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई गीत गाने से हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जब ये नियम सुप्रीम सोल ने बना दिया कि जो जितना आत्म की स्टेज में टिका हुआ होगा उसमें ही मुकर रूप से परमात्मा वास करेगा, और हमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सुप्रीम सोल बाप की पहली शर्त क्या है? आत्म की स्थिति। सिर्फ सोचने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल स्टेज में धारण होने के लिए। तो जो आत्मा देखेगा, आत्मा समझेगा, वो अपने ही सुख दुख को देखेगा, दूसरों के सुख दुख को नहीं देखेगा। है? देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा ना। अब इतने सब बैठे हुए हैं, ये सब सूरज के सामने बैठे हुए हैं और एक को छाया कर दी गई, तो ये आत्म की स्थिति कही जाएगी? बताओ, ये आत्म की स्थिति है? इसको कहें कि आत्मा स्थिति हो गई। एक आदमी छाया में बैठ गया, उसकी आंखों पर रोशनी नहीं पड़ रही, सूरज बाकी जितनी भी आत्माएं है उन सबको मुसीबत हो रही है, ये आत्म की स्थिति कही है? प्रैक्टिकल रूप है ये है? क्या कहा जाए भाई? ये तो नियम है, जैसा काम बड़े करेंगे बड़ों को देख छोटे करेंगे। तो जो बड़ा मुखिया है, प्रीचिंग करने वाला है, वो तो बैठ गया छाया में, और बाकी सब सूरज के सामने, कोई हाथ लगा रहा है, कोई कपड़ा लगा रहा है, कोई आंखें नीचे ऊपर कर रहा है, तो ये आत्म की स्थिति पक्की हो जाएगी? वाइब्रेशन आत्म की स्थिति का सबका बन जाएगा, संगठन में बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसलिए पहली पहली बात जो बाबा बोलते हैं कि आत्मा को परमात्मा से दूर नहीं समझो। जो भी आत्माएं हैं अगर आत्म की स्थिति में स्थित है तो वह परमात्मा बाप सुप्रीम सोल वहां मौजूद है ही है। वो सुप्रीम सोल बाप सबका कल्याणकारी है, एक का कल्याण करने के लिए शक्ति पर नहीं आता। और धर्म पिताएं आते हैं, वो सिर्फ अपने धर्म के फॉलोअर्स को विशेष महत्व देते हैं। परमात्मा बाप क्या करता है? हर धर्म के फॉलोअर्स में से जो भी विशेष चुनिंदा पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं सुखदायी आत्माएं हैं उनको सिलेक्ट करता है, भले कितनी भी देहवानी बन गई हो, और उनको सिलेक्ट करके उनको पढ़ाई पढ़ा के उनको सेक्स बना करके उनको क्या कर देता है, लायक बना देता है, देवी देवता सनातन धर्म में लायक बनाता है। कैसा लायक बनाता है, ला और लव में बैलेंस रखने वाला बनाता है। अगर ये बैलेंस नहीं बना तो दुनिया में सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मेरा है मेरा है, अपना है अपना है, ये करके सबको सुख दे दिया, जो मेरे बनते उनको सुख दे दिया, मेरे नहीं है कौन को परवाह नहीं की, तो संसार में कभी सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके लिए फिर रौद्र रूप धारण करने की जरूरत है। जो नहीं सुधरते हैं, जो दूसरों को आत्म की स्थिति में नहीं देखना चाहते, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करते हैं, तो आत्म की स्थिति किस बात की? आत्म की स्थिति बनती है इसका मतलब बैलेंस होना चाहिए। इसलिए इसका नाम क्या रखा बाबा ने योगी का, रुद्र ज्ञान यज्ञ। जहाँ पाप दिखाई पड़ता है, दूसरी आत्माओं को दुख दिखाई पड़ता है, वहाँ रौद्र रूप धारण कर लेता है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, अपना कौन है? जो आत्म की स्थिति में स्थित है वो अपना है, परमात्मा बाप का बच्चा है। अगर आत्म की स्थिति में स्थित नहीं है, बेधन से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है, तो वो हमारा अपना नहीं है। इसलिए बोला मीठे बच्चे, बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कैसा ज्ञान यज्ञ? शिव ज्ञान यज्ञ नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में आता भी नहीं, पाप पुण्य बनाता भी नहीं। जो पाप करते हैं उनको ज्ञान की जरूरत होती है, कि जो पुण्यात्मा है उनको ज्ञान की जरूरत है, जो पाप करते हैं उनको ज्ञान की जरूरत है। विनाश होगा तो आधे पुण्यात्माएं बचेंगे, आधे पापात्माएं बचेंगे। पापात्माएं कौन सी हुए, क्योंकि विनाश होने के बाद दो ही वर्षीय बचेंगे, विजयमाला का ग्रुप और रुद्रमाला का ग्रुप। विजयमाला का ग्रुप है वो रानियों का ग्रुप है, रुद्रमाला का ग्रुप है वो राजाओं का ग्रुप है। ज्यादा पाप किसने किए? तो रुद्र ज्ञान यज्ञ की जब रचना होती है तो पहले पहले बेसिक में ज्ञान किसको मिलना चाहिए, और एडवांस में पहले पहले किसको ज्ञान मिलना चाहिए? जो ज्यादा पतित बने हैं उनको ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, ज्यादा लंबे समय तक उनको पढ़ाई करानी पड़ती है, ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई पढ़ाने के बावजूद भी उनमें डिफेक्ट रह जाता है। इसलिए विजयमाला को आगे बढ़ा दिया जाता है, रुद्रमाला पीछे रह जाती है। इसलिए बोला कि बाद में रुद्रमाला के मन के विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। बाप जिस प्रकार का प्योरिफिकेशन चाहता है वो प्योरिफिकेशन तह तक होता नहीं, ऊपर ऊपर हम समझ लेते हैं नॉलेज को। बाप आखिर चाहता क्या है? कोई भी बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी रहे मैं सुखी हो जाऊं? चाहता है? नहीं चाहता ना। तो सुप्रीम सोल बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे दुख में रहें और मैं सुख में रहूं? अरे वो तो सुख से भी परे है तो सुख से भी परे है, वो तो है ही सदैव शांति धाम का वासी। तो मान मर्तबा भी लेना नहीं चाहता। ब्रह्मा की सोल मान मर्तबा लेकर के निमंत्रण लेकर के तब आती है, और शिव बाप कोई निमंत्रण नहीं। जब टाइम होता है, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन हर समय नहीं कर देगा, कब करेगा? जब ऑपरेशन की जरूरत होगी तो ऑपरेशन करेगा। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप बुलाने पर नहीं आता, वो मान ज्ञान मर्तबा लेकर नहीं आता, निमंत्रण से नहीं आता, जब टाइम होता है तो स्वयं आकर के अपनी ड्यूटी बजाता है। तो मान अपमान से परे है, सुख दुख से परे है, अशांति का तो नाम ही निशान है। ऐसा मीठा सा मीठा, कैसा कैसा बाप, मीठा मीठा बाप, लेकिन हम उस बाप को मीठा कहते हैं जिस स्टेज में वो मीठा है, बहुत मीठा है, उस स्टेज में वो कड़ुआ भी होता है। तो अच्छा अच्छा आप पापा कड़ुआ कड़ुआ तू तू, ऐसे तो काम नहीं चलता
बाबा।
तो बाबा जोर से बोलो।
बाबा बिना बुलाए आ गए ना, बोलते
नहीं
रहते हैं। बुलाते आ रही है, क्या बात है?
कौन से टाइम पे आया, तुम्हारे बुलाने के टाइम पे आया? तो बुलाते तो है, 63 जन्म बुलाते रहे, तो 63 जन्म जब बुलाया तब आया, तब थोड़ा ही आता है, उसे जब आना होगा तो आएगा। बुलाने वाले वैसे ही भगत की लिस्ट में आ जाते हैं, आओ आओ। अच्छा बता दिया कि मैं बुलाने पर आता नहीं हूँ, तो बुलाना माना भगत बन जाना। भगत है बुलाते हैं, और बच्चों को बुलाने की दरकार नहीं है, वो तो ये कहता है बच्चे तुम अच्छे कर्म करो, जैसे मैं कर्म चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम मनमाना भव बन जाओ। मनमाना भव का अर्थ है जो मेरा संकल्प वो तुम्हारा संकल्प हो जाए। जब संकल्प मात्र में समानता हो जाएगी तो वाचा विपरीत कैसे चलेगी, कर्म विपरीत कैसे होंगे? तो बाप चाहता है मेरे बच्चे सुखी रहे, और माँ तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है, सारी रात सबके पेशाब में पड़ी रहती है, बच्चे को अच्छे सबके सामने सुलाती है, भीगे में पड़ी रहेगी सर्दियों के दिनों में भी, बच्चे को सूखे में लेटाएगी। तो माँ बाप कभी बच्चों का सुख चाहते हैं क्या? आत्मिक स्थिति माना सबका सुख, जो भी परमात्मा बाप के बच्चे हैं वो सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे संतु निरामयः, ये तो भक्ति मार्ग में वो गीत गाते रहते हैं, लेकिन उसका असली मर्म जो है वो तभी ही मिल सकता है जब हम आत्म की स्थिति में टिके। वो आत्म की स्थिति का पाठ कोई नहीं पढ़ाता, टीका लगाना सिखा देते हैं, बिंदी लगाओ टीका लगाओ, वो तो एक दिखावा हो गया। तो बाहर के देखने से कहने से ये आत्मा पक्की, आत्मा की स्थिति पक्की थोड़ी हो जाएगी। प्रैक्टिकल जीवन में हम एक एक कार्य को देखें, एक एक बात को अपनी को परखें, क्या हम आत्मा की स्थिति का कार्य कर रहे हैं? आत्मा की स्थिति में टिक करके वो कार्य कर रहे हैं? इसलिए बोला मीठे बच्चे, कैसे बच्चे? और देवान की स्थिति में होंगे तो मीठे हुए, मीठे गाय के लिए हुए, और तो फिर पक्षपाती हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। जो रथ के प्रति आकर्षित होने वाले हैं उनके प्रति विशेष ध्यान देंगे, जो उनके रथ के प्रति आकर्षित होने वाले नहीं होंगे उनके प्रति ध्यान नहीं देंगे। तो बाप तो मीठे बच्चे किसको कहते हैं? रूहानियत में रहने वालों को कहते हैं, या जिस्मानी स्टेज में रहने वालों को कहते हैं? रूहानी स्टेज में रहने वालों को कहते हैं मीठे बच्चे। हम बाप को कहते हैं मीठे बाबा, तो मीठा वो किस आधार पर है? वो मीठा किस आधार पर है? आत्मिक स्थिति में सदैव रहता है 5000 वर्ष, तभी तो मीठा है। वो सदा से क्यों कहा जाता है? सदैव मीठा है, सदैव एक रस है, तभी तो इसे मीठा कहा जाता है। आत्मिक स्थिति में न टिके तो मीठा कहेगा? तो आत्मिक स्थिति ये है हमारा पहला पहला स्टेप, पहली पहली पढ़ाई। भले एडवांस में आ गए हैं और पहला पाठ हमारा पक्का नहीं है तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाती। ये कुर्सी को कहाँ रखना चाहिए पहले? उधर रखना चाहिए, उधर भाई जाएंगे हमको पीछे कर दिया। माता तो ये कोई आत्मिक स्थिति हुई? हुई नहीं हुई ना। ठंडा कैसे नहीं हुई है बताओ। सन्यासी लोग जब सभा में बैठते हैं तो माताओं को आगे नहीं बैठाएंगे, कभी क्या करेंगे, भाइयों को आगे आगे बैठाएंगे और माताओं को पीछे बैठाएंगे, क्यों सन्यासी इसलिए है? ये बात नहीं है, चलो वो डरते भी हो, देहभान भी हो उनमें, इसलिए पीछे दूर बैठाते हो कहीं लिप छिपने लग जाए, लेकिन असली बात उन्होंने भी परमात्मा बाप को फॉलो किए, क्या फॉलो किए उन्होंने, ये फॉलो की है कि पुरुषों की वृत्ति ज्यादा चंचल होती है, क्या चंचलता पुरुष पहले करता है, काम विकार के मामले में पहला कदम कौन उठाता है, पुरुष उठाते हैं, कन्या माताओं में लज्जा रहती है, इसलिए पुरुषों को आगे बैठाते और माताओं को पीछे बैठाते, भाव भाव का फर्क हो गया, उसमें देवानी सन्यासी होंगे वो इसलिए पीछे बैठाएंगे कि जरा दूर रहे, हम तो घरघाट को वैसे ही छोड़ छाड़ के आए, आप फिर लेट फेट में फंस जाएंगे, जो असली आत्म की स्थिति वाले होंगे वो लोक कल्याण की बात सोचेंगे, कि पुरुषों में जाति चंचलता होती है, पुरुष जाति चंचलता करते हैं इसलिए उनको आगे बैठाओ, वो सब गांधी जी की तरफ देखेंगे, पीछे मुड़ करके तो नहीं देखेंगे, कारण समझा क्या कारण हुआ, शिव तो कल्याणकारी है लेकिन रुद्र कल्याणकारी भी है और साथ साथ में हाँ विनाशकारी भी है, और बैलेंस रखने वाला है, सिर्फ किसी का कल्याण ही कल्याण सोचते रहो, बिच्छू डंक मारता रहे मारता रहे मारता रहे, वो तो मारेगा ही है, लगातार डंक मारेगा, हम तुम उसका कल्याण करते रहो तो क्या होगा, कल्याण हो जाएगा मर जाएंगे इसलिए क्या करना पड़े, बिच्छू का डंक काटना पड़े, तो इसलिए इस ज्ञान यज्ञ का नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ रखा है, बौद्धि ज्ञान यज्ञ नहीं है, क्या कि मुसलमान आते रहे उनके बीवी बाल बच्चों को लेकर के भगाते रहे भागते रहे और उन्होंने हाथ उठा दिए, हम किसी को पर आक्रमण नहीं करेंगे, अहिंसा पर वो धर्म, तो इसे ज्ञान कहेंगे, इससे शक्ति का कल्याण हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, किसे ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हो, ये धर्म पिताओं का ज्ञान यज्ञ नहीं है, उन्होंने रौद्र रूप धारण नहीं किया इसलिए दुनिया दुख में गिरती रही, जिसको दंड देना है जो दंड देने योग्य है उसको दंड मिलना चाहिए, एक बार माफ चलो अपनी गलती सुधार लो, दो बार माफ चलो सुधार लो, थोड़ी नहीं समझ पाया होगा, फिर तीसरी बार माफ नहीं करना चाहिए, और यहाँ तो कितने साल हो गए ज्ञान यज्ञ चलते चलते, कितने साल हो गए, 7 साल से भी ऊपर हो गए, 7 साल बताया था राजधानी स्थापन होने में, कौन सी धानी स्थापन होने में, राजाओं की धारणा शक्ति स्थिरियम करने के लिए ये टाइम दिया था, कितना
60 साल,
अब कितने हो गए
62-63 साल
होने जा रहे हैं, और राजाओं की जो धारणा शक्ति है, राजधानी कही जाती है ना, क्या कही जाती है, राजा की धारणा शक्ति, कोई भी राजा की धारणा शक्ति कौन होती है, अरे शक्ति कौन होती है, कन्या माता होती है ना, जो भी परिवार है जो घर को चलाने वाला है वही धारणा शक्ति हुई ना, वो स्थूल धारणा शक्ति है, फिर अपने अपने अंदर भी धारणा शक्ति है, माने जितनी जिसके पास जो प्योर करना है, हम जैसा कहते हैं वैसा करना है, ये गृहिणी का काम नहीं है, धारणा शक्ति माने पहली धारणा शक्ति कौन सी, देखो शहद की मक्खियों की एक रानी होती है,
रानी मक्खी जिस तरफ जाएगी बाकी पीछे पीछे उसका सारा झाड़ जाएगा। इतनी संगठन की पावर, इतना मीठापन उसमें कहाँ से आया? ऐसे नहीं है कि वो मक्खियां काटती नहीं है, कब काटेंगी? हैं? उनको अगर छेड़ेंगे तो काटेंगी जरूर। तो उनमें इतना जो प्योरिटी की पावर है, वो प्योरिटी की पावर इतनी संगठन बनाने की शक्ति रखती है, वो विकराल रूप भी धारण कर सकती है। फरुखाबाद में एक मंदिर है देवी की मखिया, सड़क में बना हुआ है, सड़क के बीच में। एक अंग्रेज ऑफिसर आया, उसने कहा कि इस मंदिर को उठा करके जरा बाजू में कर दो। वो तोड़वाना उसने शुरू किया, जैसे ही लोगों को लगाया, मजदूरों को लगाया उसे तोड़वाने के लिए, उसके अंदर से जाने कहां से खोह निकल पड़ी, उसे ढेर सारी मक्खियां निकल पड़ी, सब भाग गए। दोबारा नहीं वहां से मंदिर हटाने का प्रयोग उपक्रम किया। तो ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं मिसाल देने के लिए। असली बात क्या है? धारणा शक्ति है और यहाँ शिव की शक्तियां हैं। शक्तियां किसकी हैं? अभी ब्राह्मण परिवार में शिव की शक्तियां हैं। तो अपनी मनमानी चलानी चाहिए या बाबा जैसे बताए वैसे चलना चाहिए? या तो कहो कि हम बुद्धि में हम ही तीखे हैं, हम जैसे अपनी बुद्धि के अनुसार चलाएंगे वैसे ही चलने में फायदा है, वैसा ही तुमको चलना पड़ेगा, वैसा ही सबको चलना पड़ेगा। ठेका उठाओ तो ठीक, और ये ठेका माताएं उठा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माताएं अंदर से ये समझती हैं कि सारा जीवन घर गृह की पालना करते करते, बच्चों को जन्म देते उनकी पालना करते करते सारी बुद्धि उनमें खप गई। अब बुद्धि उतनी रही नहीं काम की, प्योरिटी गई माने बुद्धि गई। लेकिन एक बात है, माताओं में भावना विशेष होती है, उस भावना को अगर श्रीमत पर चलने में लगा दें तो काम बहुत ऊंचा हो सकता है। वो मातृशक्ति चाहे जगदम्बा ही क्यों न हो, लेकिन अगर सुप्रीम सोल बाप की मत पर नहीं चलेगी तो स्वर्ग कभी भी स्थापन नहीं हो सकता। इसलिए एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने ब्रह्मा के लिए बोला, बाबा ने कहा तुमको खुली छूट है माला बनाने की। अव्यक्तवाणी में बोला खुली छूट है, संदेश में भी बोला। तो ब्रह्मा बाबा बड़ी तेजी से माला बनाने लगे और शिव बाप मुस्कराने लगे। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि अपनी बुद्धि लगा करके जो भी कार्य करेंगे उसमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा ने क्या बोला, कदम कदम पर बाप की मत लेनी है। छोटा कार्य भी करना है तो पूछ लेने में क्या हो जाएगा, ऐसा करें। और फिर अगर पूछा भी और वो किया नहीं और किया उल्टा, तो उसका असर कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए बोला, तुम ब्राह्मण ऐसे ज्ञान यज्ञ की संभाल करने वाले हो, क्या ईंटों के बने हुए मकान की संभाल करने वाले? ज्ञान सरोवर माउंट आबू में बना दिया इतना बड़ा, तो वो ईंटों का जो महल बनाया गया उसको ज्ञान यज्ञ कहेंगे? वो ज्ञान सरोवर हो गया? सरोवर में ईंटें होती हैं या सरोवर में पानी होता है? क्या होता है? पानी होता है, वो तो है स्थूल जल। यहाँ ज्ञान में कौन सा जल है? ज्ञान जल। तो जहाँ ज्ञान की बातों का लेन देन है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, वो ज्ञान सरोवर हुआ ना। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। वो कहाँ से निकलती है? है? हिमालय में कहाँ से? हिमालय तो कहाँ से? कश्मीर से लेकर के और आसाम तक फैला हुआ है, ज्ञान मानसरोवर से। क्या नाम दिया उसका? ज्ञान मान सरोवर। बहुत ऊंची स्टेज में वो तालाब है। शास्त्रों में नारायण को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर कहो, मान सरोवर कहो, हंसों के रहने का स्थान कहो, वो ऊंची स्टेज है। तो ऐसी स्टेज ऊंची कब बने? सिर्फ प्यार प्यार से काम चलता रहेगा तो ऊंची स्टेज कही जाएगी प्रैक्टिकल में? नहीं बन सकती। ऊंची स्टेज भी कब कही जाए? یہاں لب کی جگہ لگ دیا جائے اور لا کی جگہ لتاڑ دی جائے. اگر یہ پریورتن نہیں ہوا تو ستیوگ کبھی آنے والا نہیں ہے. اس لیے بولا, کیا بولا, برہما دوارا استھاپنا, شنکر دوارا وناش. کیوں استھاپنا کے ساتھ ساتھ وناش کیوں لگائی دیا؟ استھاپنا کس کی؟ اچھے اچھے کی استھاپنا. بھائی بیٹھے رہو, تھمے رہو, ڈٹے رہو, گھبراؤ مت, استھیریم رہو, بدھی کو استھر رکھو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہوئی استھاپنا کس کے لیے؟ جو اچھے ہیں ان کے لیے, اور جو ہلانے والے ہیں. مرلی بولا, کوئی ہوتے ہیں تھمانے والے اور کوئی ہوتے ہیں بھگانے والے. یہاں براہمن دونوں طرح کے ہیں, ایڈوانس پارٹی میں بھی ہیں تو بیسک نالج میں بھی ہے. دونوں طرح کے براہمن ہیں. ایک ایسے ہیں جو ایشوریہ گیان میں تھماتے ہیں کوئی بھی آتماؤں کو, ایسے کام کریں گے, ایسی باتیں کریں گے, ایسا دستی کا سنیہ دیں گے کہ آتمائیں اگر بھاگتی بھی ہوں تو تھم جائیں. اور دوسرے ایسے ہیں کہ ایسے ایسے کام کریں گے, ایسی ایسی باتیں کریں گے تیکھی تیکھی, کہ جو آتما کتنی بھی ہمت الاس لے کے آئی ہو, امنگ اتساہ لے کر کے آئی ہو, اس کو بھی ہلا دیں گے, بھگا دیں گے. لیکن وہ گیان نہیں ہے. گیان کوئی کتنا بھی اچھا سناتا ہو, کتنا بھی اچھا سمجھتا ہو, سنتا ہو, سناتا ہو, سمجھتا ہو, اس سے پریورتن ہونے والا نہیں ہے. کب پریورتن ہوگا؟ جو بھی گیان سنا ہوا ہے وہ پریکٹیکل جیون میں دھارن کیا ہوا دکھائی پڑے. اندر بھی انبھوتی ہو وہ خوشی کی انبھوتی ہوگی, اور جو دوسرے ہیں ان کو بھی انبھوتی ہو. اس لیے بولا, تم براہمن اس یگی کی سنبھال کرنے والے ہو. کس یگی کی؟ رودر گیان یگی کی سنبھال کرنے والے ہو. اس لیے تمہیں پوتر ضرور رہنا ہے. کیا پیورٹی اس کا نام نہیں ہے کہ صرف برہمچری ویت کو پالن کر لیا. برہمچری ویت پالن کیا سنیاسیوں نے اور ایشیا دیش بنا رہا تو اس کو برہمچری کہیں گے؟ نہیں, وہ اصل برہمچری ہو ہی نہیں سکتا. ریکارڈ چلا ہے کتنا میٹھا کتنا پیارا شیو بھولا بھگوان ہے. جنہوں نے یہ ریکارڈ چلایا, کلاسز میں چلا ہے نا کبھی یہ ریکارڈ؟ نہیں چلا ہے. بیسک نالج میں بہت چلا ہے. کتنا میٹھا کتنا پیارا شیو بھولا بھگوان, تو وہ ریکارڈ ریکارڈ تک ہی چلا. یہ پریکٹیکل جیون میں ابھی بیسک نالج میں دیکھا جا رہا ہے. ابھی وہ شیو بھولا بھگوان ایسا تو نہیں کہ وہ ان کو دھرمراج کے روپ میں دکھائی پڑتا ہو. کتنا بھولا کتنا میٹھا دکھائی پڑتا ہے. اگر میٹھا اور بھولا دکھائی پڑتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے میٹھے اور بھولے بھگوان کو پہچانا ہے. اگر دکھائی نہیں پڑتا ہے, بدھی یہ گیان کو مانتی ہے کہ ہاں یہ پارٹ تو صحیح ہے, گیان اچھا ہے, گیان کے آدھار پر سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکل چلن صحیح نہیں ہے, تو پہچان کہیں گے. وہی بات, اچھا اچھا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا کروا سوٹ ہو. ارے جب سپریم سول بات ہے, بات ثابت ہوتا ہے, وہ بھولا نا سے ثابت ہوتا ہے, تو پہلے رکھن کس کو دے گا؟ بھولے کو رکھن دے گا. جو باپ کے میٹھے بچے ہیں ان کو رکھن دے گا, کہ جو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جانے والے ہیں ان کو رکھن دے گا. وہ تو وکرال روپ دھارن کرنے والا ہے. اس لیے اس گیت میں جو اندرونی بات بھری ہوئی ہے کہ جو جتنا میٹھا ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ صحیح ویوہار نہ کیا جائے اور دوسروں کے ساتھ بھی وہ دیکھے گا کہ صحیح ویوہار نہیں ہو رہا ہے تو میٹھا وکرال روپ بھی دھارن کر سکتا ہے. اوم شانتی. وید کا باپ کہتے ہیں میں ایک ہی بار 5000 ورش کے بعد تم بچوں کا مکھڑا دیکھتا ہوں. کیا کون سا مکھڑا؟ 5000 ورش کے بعد. یہ بعد کیوں لگا دیا ہے؟ नहीं 5000 वर्ष के बाद क्यों बोला? 60 वर्ष कम, 63 वर्ष कम, 65 वर्ष कम, 60000 वर्ष क्यों, 5000 वर्ष क्यों नहीं बोला? 5000 वर्ष के बाद क्यों बोला? हैं? नहीं, 63 वर्ष अगर कम कर दें तो उस समय बच्चे बीखे होते हैं, रूहानी स्टेज में होते हैं, बाप के बच्चे होते हैं, रावण के बच्चे होते हैं। उस समय बच्चे किसके होते? आज से 63 वर्ष पहले हम रावण के छोटली बच्चे थे या राम के बच्चे आत्मिक स्टेज में टिक गए थे? रावण के बच्चे थे, आत्मिक स्टेज में हम नहीं थे। आत्मिक स्टेज में टिकना कोई 1 सेकंड की बात नहीं है। अगर 1 सेकंड की बात होती तो गीता में ये श्लोक नहीं होता। अभ्यास है न तो कौन से है, अभ्यास से ही वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है, नहीं तो वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तो कितने लंबे समय का अभ्यास हुआ, राजधानी स्थापन होने में कितना टाइम लगता है? 7 साल। तो 7 साल में जो भी शक्तियां हैं नंबर वार, वो सारी उसी स्थिति में स्थित हो जाती है क्या? या कोई विशेष एक शक्ति है जो 100% उस रूप में स्थिर हो जाती है कि सब हो जाती है? तेरे भाने सर्व का भला, मतलब क्या हुआ है? नंबर वार होंगी ना। तो नंबर वार शक्तियों में पहली शक्ति कौन, इसका नाम क्या है? जगदम्बा। क्या नाम दिया? जगत की अम्बा। वो सौम्य रूप धारण करती है या विकराल रूप धारण करती है? वो विकराल रूप धारण करती है वही जगदम्बा, जगत की अम्बा, बड़ी माँ, जिसका नाम दिया ब्रह्मा। दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है। जो जगदम्बा का अर्थ है वही ब्रह्मा का अर्थ है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रूप अलग अलग हो जाते हैं। वही ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज, जिसने अति का प्यार दिया, वही सोल उसमें प्रवेश करती है और जगदम्बा के रूप में पाठ बजाती है, तब उसकी पूजा होती है। क्यों प्यार किया तब पूजा क्यों नहीं हुई? जिस रूप से उन्होंने अति का प्यार दिया उस रूप से पूजा क्यों नहीं हुई? दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? अच्छा, हम ज्यादा पवित्रता धारण कर माला ही बढ़के ज्यादा पवित्रता धारण कर लेते हैं। ला और लव का बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है, उसके मूल में ये बात समाई हुई है कि असली पवित्रता को पहचाना नहीं। जो शिव के मंदिर में शिव की प्योरिटी दिखाई गई है उस प्योरिटी की असली बात को उन्होंने पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। ब्रह्मा को देवी कहते हैं, मुरली में बोला, माने वो बच्चा बुद्धि है, किसी की सोल बात की गहराई को, एडवांस के रहस्यों को पहले नहीं समझ सकती। इसलिए वही सोल जब शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ने के बाद वो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके संग का रंग लेती है तो उसकी बुद्धि भी महीन महीन बनती है बीज रूप स्टेज में आने के कारण। वो बुद्धि मन बुद्धि रूपी आत्मा जो जो महीन बनती जाती है, सूक्ष्म बनती जाती है, क्यों क्यों उनका सूक्ष्म शरीर दल होता जाता है। पहले अव्यक्तवाणी चलाते थे, आवाज से बोलते थे, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे आवाज गायब हो गई। अभी तो बोलने में भी बड़ी मुश्किल होती है। तो से, अगर पावन ना हो तो फिर उनको शरीर का जन्म लेना पड़ेगा। उनका साकार शरीर का पुरुषार्थ कंप्लीट हो गया, सूक्ष्म शरीर का नहीं हुआ। 13592 की मुरली का पहला पेज, दूसरी लाइन, तो ब्रह्मा की सोल जिस रूप में नहीं पूजी गई, जिस साकार चोले के रूप में नहीं पूजी जाती, वही सोल उस चोले को छोड़ कर क्या करता? अकेली थोड़ी है, उसकी भुजाएं भी तो हैं, वो भी नंबर वार संसार संसार विकराल रूप धारण करती है। इसलिए उसका नाम दिया रुद्र ज्ञान यज्ञ। रौद्र रूप धारण करने की भी शक्ति है, लेकिन ऐसे बैलेंस में रहने वाले रहस्य बच्चों का बुखरा बात 5000 वर्ष के बाद देखते, 63 वर्ष कम, 5000 वर्ष बाद देखते हैं। ऐसा नहीं बोला, क्या बोला? ऐसे बच्चों का मुखरा जो लाव और लव में बैलेंस रखने वाले हैं, उनका मुखरा 5000 वर्ष के बाद देखते, अभी कितना टाइम कम है? हो गया? अभी अभी नहीं हुआ, अभी 5,000 का सोएगा तुम्हें? और कितने 7 साल बाकी है, तब मुखरा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर तने मुखरा देखने के लिए बचे रहेंगे? राजधानी स्थापना की बात नहीं हो रही है यहाँ, बच्चों का जो बैलेंस में धारण, बैलेंस को धारण करने वाली आत्मिक स्टेज वाली आत्माएं हैं, उनकी बात की बात। कौन से बच्चों का मुखड़ा देखना चाहते हैं? आत्मिक स्थिति वालों का या देवान की स्थिति वालों का मुखड़ा देखना चाहते हैं? तो आत्मिक स्थिति सब 36 में तो किसी को नहीं कहेंगे, एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी आत्मिक स्थिति नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल रूप नहीं कहेंगे कम से कम। चलो आत्मिक स्थिति किसी की बनी हो, जैसे बाबा ने बोला आत्मा रूपी सुई की सारी का उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बात से सीखोगे, तो चलो डायरेक्ट बात का प्रत्यक्षता अगर 76 हो गया, डायरेक्ट बात प्रत्यक्ष हो गया, तो उस बात के से डायरेक्ट पढ़ाई करने वाले पढ़ने वाले कोई तो बच्चे होंगे, लेकिन वो नंबर वार की लिस्ट में होंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चे प्रैक्टिकल आत्मिक स्टेज वाले होंगे, तो वो प्रैक्टिकल आत्मिक स्टेज वाले जो बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं उसका टाइम बताया। पक्की आत्मिक स्टेज कितनों की बनेगी? एकदम 100% आत्मिक स्टेज वाले बच्चे कितने बनेंगे? 108 बनेंगे, 8 बनेंगे। हर धर्म की जो चुनिंदा बीज रूप आत्माएं हैं, जिनमें से 4 चंद्रवंश और 4 सूर्यवंश, 4 जगदम्बा की कैटेगरी के और 4 सूर्य ज्ञान सूर्य की कैटेगरी के, ये 8 रुद्रमाला के मन के होंगे ऊपर वाले, जो पक्की आत्मिक स्टेज वाले होंगे, बैलेंस वाले होंगे। तो 5,000 वर्ष के बाद तुम बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। वो मुखड़ा कैसे होगा? देवान वाला मुखड़ा नहीं होगा, आत्मिक स्थिति वाला मुखड़ा होगा, जिस आत्मिक स्थिति का संस्कृत की भक्ति मार्ग वाली गीता में भी जिक्र है। क्या जिक्र है? आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा।
कल्याणकारी
है ना, क्या हत्या करेगा आत्मिक स्थिति वालों की हत्या करेगा, या जिन्होंने आत्मिक स्थिति का नाम ही नहीं लिया, नाम लेना भी पसंद नहीं करते, उनकी हत्या करेगा? हत्या किसकी करेगा? अरे सस्ती पर 4,500 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो जो 4,500 बचेंगे वो आत्मिक स्थिति वाले होंगे या देवान की स्थिति वाले होंगे? आत्मिक स्थिति वाले बचेंगे, और बाकी सबकी हत्या हो जाएगी। तो इसे साबित होता है ना कि उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं, परमात्मा बाप की बात मानी नहीं। बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, क्या बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, ये नहीं कहा होगा नहीं, क्या कहा? किस समय की बात, किस समय की मुरली है? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय ये मुरली चली, किसके मुख से चली? ब्रह्मा के मुख से चली। क्या चली? बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, तो बोलते कैसे है? मैंने बोलते तो है, लेकिन जिस तन के द्वारा बोल रहे हैं, मुख के द्वारा बोल रहे हैं, वो उनका अपना मुखड़ा बाप का मुखड़ा नहीं है, वो किसका मुखड़ा है? माँ का मुखड़ा है, और वो भी मुखड़ा तू भी नहीं बनता है। तो बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, पुराना मैंने तमो प्रधान वैसे तो प्रधान तमो प्रधान, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नहीं है, दोनों को सत्य प्रधान बनाता हूँ। क्या बोले मुरली में? ऐसे नहीं कि तुम्हारी आत्मा को ही सत्य प्रधान बनाता हूँ, जो शरीर रूपी तुम्हारी नैया है, जिस पर ये आत्मा तुम्हारी बिठैया है, दोनों को सत्य प्रधान बनाता हूँ, दोनों को 25 से पावन बनाता हूँ। तो क्या 36 में आते ही बन जाते? 36 में आए या जब ये वाणी चल रही है उसमें कहेंगे कि आत्मा और शरीर रूपी नहीं है, दोनों पावन बन गए, सात्विक बन गए? नहीं। तो बाप को अपना मुखड़ा है नहीं, मैंने उस समय तक उनको अपना मुखड़ा नहीं था। और वो अपना मुखड़ा कब होता है? जब बाप की पूरी प्रत्यक्षता हो ब्राह्मणों की दुनिया में, वो तिरंगा झंडा संसार में बुलंद हो गए। अगस्तवाणी में तो बोल दिया अभी 1-2 वर्ष पहले कि 3 चीज फिक्स हुई है, लेकिन बच्चों को इस बात की अनुभूति अभी हो रही है क्या? किस बात की? केवल तीन सूट से वाले मुखड़े कौन कौन से? वो तिरंगा झंडा में तीन कपड़े कौन कौन से? वो त्रिमूर्ति कौन सी है जो सारे विश्व में देखे विश्व विजय करके निकला तब हो गया प्रणपूर्ण हमारा? वो प्रत्यक्ष है बच्चों को सबको मालूम है, मालूम है एक बात अलग और जो मालूम आते है उसके ऊपर निश्चय कितना है। तो बोला कि बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, समूह प्रधान शरीर का लोन लेते हैं, नए शरीर का लोन तो मुखड़ा कैसा होगा? पुराना ही मुखड़ा होगा ना, 5000 वर्ष बाद का मुखड़ा नहीं कहेंगे उसे। लेकिन जब 5000 वर्ष पूरे होते हैं तो वो मुखड़े खिल जाते हैं, आत्मिक स्टेज वाले हो जाते हैं, बैलेंस वाले हो जाते हैं। तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। क्या कहा? जब पुराने शरीर का लोन लेते हैं तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। कौन कौन देखते हैं? तुम बच्चे देखते हो, बाप और दादा दोनों का मुखड़ा, एक का नहीं। बाप कौन? राम बाप जिसमें सुप्रीम सोल बाप बैठा हुआ है, और दादा ब्रह्मा की सोल, दोनों का मुखड़ा। तो दोनों का मुखड़ा दो होंगे या एक होगा? हाँ, वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। तो दोनों का मुखड़ा देखते हो, ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर और कोई धर्म में नहीं होता है। कैसा? जो इतना प्यारा पाठ बजाए और इतना विकराल रूप धारण करे, एक ही शरीर से एक ही जन्म में प्यारे से प्यारा पाठ बजाता है और विकराल से विकराल पाठ बजाता है। तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो, सब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकारो। सब कहते हैं जब दोनों का मुखड़ा कंबाइंड रूप में एक के अंदर ही तुम बच्चे देखते हो, जिसमें किसी की सोल भी है, शिव की सोल भी है और राम की सोल भी सारी करती है। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, कौन सी माला देखी है? रुंड, एक होती है मुंडमाला, एक होती है रुंडमाला। रुंड किसे कहते हैं? जो भी सर से नीचे का हिस्सा है वो सारा रुंड कहा जाता है, और जो सर है उससे मुंड कहा जाता है, मुंडी। जिस मुंड में मुंडमाला में मुख दिखाई जाते हैं, कोई मरके में एक मुख, कोई में दो, कोई में चार, कोई में दस, कोई में 14 नंबरवार मुख होते हैं, वो है मुंडमाला। और जिसमें मुख नहीं दिखाई जाती वो है रुंडमाला। प्रैक्टिकल एक्ट कौन करता है? प्रैक्टिकल एक्ट मुंड करता है या रुंड करता है? नहीं, करती तो है लेकिन काम करने वाला कौन? प्लानिंग बनाने वाला कौन? प्लानिंग बनाने वाला इंजीनियर, उसे कहेंगे मुंड। और प्रैक्टिकल एक्ट करने वाला कौन? रुंड। लेकिन काम तभी करेंगे जबकि मुंड और रुंड के साथ मिल जाए। अगर तलवार से अलग कर दिया जाए तो प्रैक्टिकल एक्ट नहीं होगी। इसलिए विष्णु को बताया है प्रैक्टिकल परिवर्तन शक्ति। तो बोला अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है। रुंडमाला माने कौन सी माला? रुंडमाला माने विजय माला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं, रुंडमाला बनाई जाती है, फिर में मुखड़ा दिखलाते हैं, रुंडमाला में मुखड़ा दिखलाते हैं और रुंडमाला बनाई जाती है। जब बनाई जाती है तो सेवाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखो। कैसे देखो? जब विजय माला कंप्लीट होती है तो उसमें रुद्रमाला के मणके ऐड किए गए, सिलाए गए, तो ऐसा संपन्न रूप शिव बाबा का देखो। इसलिए एक मुरली में कहा सबसे अच्छे से अच्छा याद करने का पुरुषार्थ का तरीका है नारायण को याद करो। नारायण को याद करो कि शिव बाबा को याद करो कि शिव बाबा को याद करो कि शरद को याद करो कि शांति धाम परम धाम को याद करो? कैसे याद करें? अनेकों को याद करें। उसका नारायण के संपन्न स्वरूप में सब समा जाता है। तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखो, कैसे मुखड़ा देखो, तो रुंड माला में मुंड माला समाई हुई है। रुंड माला का जो पहले पति क्या करता है, किसका आधार लेता है, शशि रचने के लिए पत्नी बनाता है, आधार लेता है ना, उसके आधार पर सारा घर का कार्य व्यवहार चलता है। तो कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर भी क्यों लगा दिया, या भी शब्द क्यों लगाया, नहीं है शिव बाबा और एक शब्द है शिव बाप। शिव बाप तो आते ही है परमधाम से शक्ति पर, बन्नी बनाते हैं वो, हाँ तो वो, लेकिन यहाँ बोला शिव बाबा भी जो साकार बाप है वो भी आकर के शरीर का लोन व आधार लेते हैं, ऐसे नहीं कि वो रोग रूप खुद धारण करते हैं। उसके लिए धारण शक्ति का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, आधार तो इसका भी लिया दादा लेखराज का, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट करने के लिए, स्वरूप का संहार करने के लिए और देवात्माओं की पालना करने के लिए इसका आधार नहीं लिया। इसका आधार किसने लेते हैं, इस ब्रह्मा का आधार मुख से बोलने के लिए, सिर्फ मुरली बोलने के लिए उस समय का आधार लिया है, टीचर बनने के लिए भी नहीं कि जो बोला हुआ है उसको एक्सप्लेन भी करे, तो ये उनका हो गया ना। कौन ये है उनका हो गया ना, ये है मैंने कौन ब्रह्मा बाबा, उनका हो गया, मेरा हो गया ये नहीं कहा, उनका हो गया ना, किनका हो गया, शिव बाबा का, शिव बाप का नहीं, शिव बाबा का हो गया ना। सब शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो यह उनका हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर के बच्चों का मुखड़ा देखते हैं, ये समय मैंने किस समय, संगम युग में, संगम युग में एक ही बार बाप आकर के बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। एक बार में कब, किस समय की बात हुई, सन 36 की बात नहीं हुई, सन 76 की भी बात नहीं हुई, सन 76 से पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ, उससे पहले सिर्फ संगम युग था, लेकिन उस समय की बात नहीं है। ऊपर बताया कितने साल के बाद, 5000 वर्ष के बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। तो पुरुषोत्तम संगम युग में भी जब वो टाइम पकता है कि आत्माएं आत्मी के स्टेज में प्रैक्टिकल में स्थिर हो जाए, तो इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। एक ही बार क्यों बोला, बार बार क्यों नहीं देखते, नहीं, जिस तन में प्रवेश करके प्रैक्टिकल एक्ट संसार के सामने परमात्मा पाद की बजाते हैं, वो संपन्न स्टेज एक ही बार बनती है, बस उनका काम पूरा हो जाता है। किसका, सुप्रीम सोल बाप का कार्य पूरा हो जाता है, वो बच्चा अपन को बाप समान स्टेज पर स्थिर कर देता है।